हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवा अध्याय श्लोक संख्या 40 एंड 41। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपक याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयम् ददान्ति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीयुत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति, गोपीश गोपिका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते, तप्त कांचनं गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सूते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद नवा अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। भीष्म देव भगवान की अत्यंत ही सुंदर स्तुति करते हैं, और श्लोक नंबर 39 में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई भगवान को। भीष्म पितामह ने कहा, विजय रथ कुटुंब आत्तोत्री दिताय रश्मिनी तत्शायी क्षणी, कि क्योंकि अर्जुन का रथ ही आपका कुटुंब है, तो आप बस उसी को संभालने में सदैव लगे रहते हैं। एक हाथ में आपकी चाबुक और दूसरे हाथ में लगाम, और अपने सारथी के कर्तव्य को निभाते हुए मैं आपको जब देखता था, आप इतने सुंदर दिखते थे, आपकी सुंदरता अत्यंत ही मनमोहक थी, वो सुंदरता मैंने देखी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं विपक्षी था और आपको सदैव युद्ध में निहारता रहता था, और आपको निहारने का कितना बड़ा सौभाग्य, जिसको आपके दर्शन मिल जाए कितना बड़ा सौभाग्य उसका। और कहते हैं, भगवती रतियस्तु मे मुमुर्षु यमिह निरीक्ष हतागता स्वरूप। अरे, आपकी छवि को निहारते हुए यदि आपका शत्रु भी प्राण त्याग करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, उसे आपका धाम प्राप्त होता है। इसलिए आज मैं आपका प्रेमी बनकर आपको निहारते हुए यह शरीर त्याग करना चाहता हूँ, और मुझे विश्वास है कि मुझे सदगति प्राप्त होगी, आपका सानिध्य प्राप्त होगा, और मरते हुए लोग अंत में कृष्ण के दर्शन करके कृष्ण को प्राप्त हो गए। ये कोई आश्चर्य की बात ही नहीं, क्योंकि ये तो रूल है। लेकिन आज भीष्म पितामह उससे भी अधिक एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि वास्तविक आश्चर्य तो की बात तो ये है कि मदांत अज्ञानी लोग भी भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञान होना चाहिए कि हम युद्ध करेंगे, भगवान को देखेंगे, स्मरण करेंगे, उसके बाद मृत्यु होगी तभी हमें कृष्ण प्राप्ति होगी। नहीं, कृष्ण प्राप्ति तो केवल उनको भी हो चुकी है जो मदांत हैं, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं, अर्थात वो गोपियों को याद करके भीष्म पितामह इस मरने के अंतिम स्वरूप अंतिम समय में पार्थ सारथी के साथ साथ आज गोपी जन वल्लभ कृष्ण के याद कर रहे हैं। वो कृष्ण जो गोपियों के प्राण धन है, वो कृष्ण जो गोपियों के प्रेम के लिए, इस प्रेम से प्रेम के आदान प्रदान करने के लिए इस तरह धाम पर पधारे। और वो कहते हैं भीष्म पितामह गोपियों को याद करते हुए, भगवान के ब्रज रस को याद करते हुए कहते हैं, चैप्टर 9 वर्स नंबर 40, ललित गति विलास वरगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदांधा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवित्वत्व ललित गति विलास वरगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदांधा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवत्व ललित गति विलास वरगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदांधा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवत्व ललित गति विलास वरगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदांधा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवत्व ललित गति विलास वल्गुहास। ललित गति का मतलब होता है आकर्षक, और गति का मतलब होता है हिलना डुलना, यानी कि भगवान बिरज में जैसे चलते थे, उनका चलना इतना आकर्षित था, वो जो चलते थे ना उनकी गति जो थी, वैसे हर जगह पे भगवान इस तरह नहीं चलते, संभाल के चलते हैं थोड़ा, क्योंकि ऐश्वर्य होता है फिर तो वो द्वारिकाधीश बन जाते हैं, लेकिन वो फिर इस तरह से नहीं चलते। लेकिन ये जब भगवान ब्रज में होते थे तब तो एकदम टेढ़े टेढ़े, मतलब हर चीज उनकी टेढ़ी टेढ़ी चलती थी, टेढ़ा टेढ़ा खड़ा होते थे, टेढ़ा देखते थे। मगर श्री राम जो है वो जब रास्ते पे चलते थे या कहीं जाते थे तो किसी स्त्री को नहीं देखते थे, लेकिन कृष्ण बिना देखे रहते नहीं थे। ये कभी भी ब्रज में सीधा नहीं चले, हमेशा बांसुरी बजा कर लटक कर ऐसे चलते थे, पहले पीछे देखते, फिर बगल में देखते, तिरछी चितवन से देखते, किसी को किसी तरह से घायल करते, ऐसे आंखें इस तरह से चलाते थे अपने नेत्रों को कि जिधर भी देखते थे ना बस वो घायल हो जाता था। अद्भुत चाल से भगवान ब्रज में चलते थे, सब कुछ टेढ़ा है वहां पर, उनकी पगड़ी टेढ़ी, उनकी चाल टेढ़ी, वो खड़े होते थे टेढ़ा मेढ़ा, और भाषा भी टेढ़ी, सब कुछ टेढ़ा है, इसीलिए उनको बांके बिहारी कहते हैं। और जब वो टेढ़े टेढ़े चलते थे या ये सब उल्टे सीधे कार्य करते थे, देखते थे किसी की ओर या किसी को छेड़ते थे, तो इसको ललित गति कहते हैं। और कभी कभी टेढ़ी चाल या इस तरह से ललित गति लोग को बहुत आकर्षित करती, बहुत स्वीट लगती है ना, सीधा साधा व्यक्ति जो है वो इतना आकर्षित नहीं होता है जितना ये फंकी टाइप। इसे कृष्ण कैसे हैं, एकदम कभी भी सीधा काम नहीं करते थे, देखते थे एक और एक गोपी की ओर और बात करते थे दूसरी गोपी से, और इस तरह से दोनों को, और तीसरी जो जा रही होती थी वो इसको देख के कि कैसे वो कर रहा है, तीसरी भी घायल, सारी एक साथ घायल करते थे वो। तो इसको कहते हैं ललित गति विलास वल्गुहास। विलास का मतलब होता है बस इशारे भी करते थे साथ में, चलते थे देखते थे और किसी को इशारा करते थे, मतलब मुग्ध कर देते थे किसी को, बस मुग्ध कर देते ना, बिल्कुल सुन कर देते थे उसकी, जो कोई काम से जा रही होती थी ना कोई गोपी कि भाई अभी मैं ये दूध लेकर आती हूँ गायों से धोकर या गायों को चारा देके, अब बस उसको देखा कृष्ण को शुद्धि बुद्धि भूल जाती थी। और वल्गु हास्य, बात तो ऐसा करते थे और मुस्कुराते, हास्य का मतलब होता है मुस्कुराते, इतना मधुर मुस्कुराते थे कि बस वो उसकी मुस्कान में ही खो जाती थी, ऐसे भगवान का सब कुछ मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। तो सारा का सारा कृष्ण इतने मधुर मधुर है कि जो भी उनको देखती थी बस मदांत हो जाती। यह बता रहे हैं कृतम अनुकृत वत्य उन्मदांदा, मतलब वो भगवान की लीलाओं से इतना सुंदर, भगवान की लीलाएं उससे इतना ज्यादा आकर्षित होता है, मतलब भगवान को देखते थे ना जब तो वो छप जाता था, भगवान का जो वो सीन होता था ना, भगवान जो भी काम करते थे वो बस माइंड में बस जाता था, निकलता नहीं। मतलब भगवान कैसे रहते थे, पगड़ी भी सीधी नहीं पहनते थे। अब देखो भगवान विष्णु या भगवान श्री राम सब एकदम सीधी सादी पगड़ी पहनते हैं, है ना, मुकुट रहता है उनका, और उनकी पगड़ी हमेशा लटकी रहती थी। मतलब ऐसे भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं ब्रज में कि मुकट लटक भिकुटन की मटक मन गयो है अटक वाकी टेढ़े पट पे, सदैव टेढ़े टेढ़े ऐसे कार्य करते थे कि बस मन ही उनका उनके अंदर रम जाता था और कुछ रहता नहीं था। और क्या करने लगती थी, कृतम अनुकृत वत्य, वो भगवान का अनुकरण करने, भगवान की नकल करने लगती थी। अब भीष्म पितामह रास लीला के विषय में याद करें, जब रास लीला के समय कृष्ण जो थे वो गोपियों से दूर चले गए थे, तो उस समय क्या करती गोपियां, अनुकरण, जैसे एक गोपी यशोदा बनती थी, फिर दूसरी गोपी कृष्ण बनती थी, और यशोदा जो बनी थी वो गोपी कृष्ण बनी गोपी को खुद से बांध देती थी। जो कृष्ण बनती थी वो नल कुबेर और मणिग्रीव को गिराकर, वृक्षों को गिराकर उनका उद्धार कर देती थी। कभी कोई गोपी कहती थी कि कोई जरूरत, आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, रुको रुको मैं ये सारी अग्नि को पी जाऊंगा। ऐसे वो कृष्ण बन के दावानल को पीने का ना कृत्य करती, अनुकरण करती थी। तो कभी कभी सारी गोपियां जो हैं वो ब्रजवासी बन जाती थी और बोलती थी इतनी तेज वर्षा आ गई है, कृष्ण बचाओ, कृष्ण इतने इंद्र ने हम तो कोप कर दिया है। फिर वो कृष्ण बोलते थे आपको भय नहीं करना है, मैं हूं ना, मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा। फिर जो कृष्ण बनती थी वो अपनी ओढ़ने को ऐसे गोल गोल बना के ऐसे अपनी छोटी जो उंगली है उसके ऊपर खड़ा करती थी और बोलती थी आ जाओ सब गोवर्धन के नीचे आ जाओ, गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। और इस तरह से अनेक अनेक लीलाएं करती थी। एक एक लीला गोपियों ने अपने मन में बसा के रखी थी और कृष्ण को आज भीष्म पितामह याद करा रहे हैं। वे कहते हैं कि आप कितने करुणामय हो, युद्ध में मरने वाले सैनिकों को तो आपने वह गति प्राप्त कराई, और ये कृतम अनुकृतवत्य उन्मदांदा, ये जो उन्मद गोपियां थीं जो मतलब आपकी लीलाओं का अनुकरण करती थी, उन्माद में पागल हो गई थी, उनको भी प्रकृति मगन की लयस्य गोप वृद्ध, जो भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव को वो भी निश्चय ही प्रकृति मतलब उसी लक्षण को अगन का मतलब है प्राप्त किया है, किल निश्चय ही यस्य, उन गोपियों ने भी निश्चय ही आपके ही भाव को, आपके लोक को प्राप्त किया है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह अपने हृदय की बात रख रहे हैं कि जो जिस भाव से भी आपके पास आता है वो 100% आपको ही प्राप्त करता है। तो मैं भी अपने मन वचन कर्म हर चीज को आपको समर्पित कर रहा हूँ, अपनी बुद्धि को आपको समर्पित कर रहा हूँ, और मुझे निश्चय है कि मैं भी आपको अवश्य प्राप्त करूंगा। अनुवाद, मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रजधाम की रमणियों यानी गोपियों को आकर्षित कर लिया। भगवान द्वारा रासलीला से अंतर ध्यान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की इच्छा हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ब्रजभूमि की गोपियों ने प्रेममयी सेवा में अतीव आह्लाद से भगवान के साथ साथ नाच कर माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास परिहास करके तथा प्रेम भाव में उनकी ओर देखकर एक आत्मीय किया। अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्म देव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय था, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय था। भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान शक्ति नहीं प्रदान की थी, किंतु गोपियां तो बिल्कुल भगवान के समान हो गई थी। भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण की आकांक्षा एक प्रार्थना है जिससे जीव की अंतिम अवस्था में उनकी कृपा प्राप्त हो सके। श्रील प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि अर्जुन को तो भगवान ने सुरक्षा प्रदान की थी, लेकिन भगवान ने अपने जैसी शक्ति उसे प्रदान नहीं की थी, लेकिन गोपियां क्योंकि कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी तो वो गोपियां कृष्ण ही कृष्णमयी हो गई थी। तो आज अंतिम समय में जब भीष्म पितामह उन गोपियों को याद कर रहे हैं तो ये एक आकांक्षा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जिससे जीवन की अंतिम अवस्था में उनकी कृपा प्राप्त हो सके। भगवान भक्तों को महिमा मंडित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। अतः भीष्म देव ने केवल अर्जुन के कृतियों का ही यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ जब उनका संबंध, जो उन्होंने प्रेम और जो संबंध का आदान प्रदान किया होता है ना, जब भगवान को याद कराते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और भगवान का सर्वोच्च संबंध था गोपियों के साथ, और गोपियां भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, तो भीष्म पितामह उनको कैसे भूल सकते हैं। इस समय, अंतिम समय में वो भगवान को गोपियों के साथ उनका प्रेम याद करा रहे हैं। और अतएव भीष्म ने केवल अर्जुन के कृत्यों का यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, उन्हें भगवान की सेवा करने का अद्वितीय अवसर प्राप्त हो सका। भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष से करने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह समता पूर्ण आह्लाद की है, जहाँ अंतर का उच्छेद हो जाता है, क्योंकि प्रेम प्रेमी प्रेमिका के हित एक से हो जाते हैं। अब शिला प्रभुपाल जी यहाँ पर निर्विशेषियों के विषय में बता रहे हैं कि निर्विशेषवादी सोचते हैं कि हम ज्योति में अंदर विलीन हो जाएंगे और आनंदित हो जाएंगे, लेकिन उनको ऐसा आनंद प्राप्त होगा क्या? क्योंकि जब कृष्ण प्रेमी हैं और गोपियां प्रेमिका, तो प्रेमी और प्रेमिका का जो मिलन होता है वो शून्य में लीन होने से थोड़ी ना प्राप्त हो जाता, क्योंकि प्रेमी तथा प्रेमिका के हित एक से हो जाते, फिर उनका एक लेवल हो जाता है, और इतना प्रेम का आघाड़ होता है, आनंद होता है, वो कभी शून्य में प्राप्त नहीं हो सकता निर्विशेषवादियों को। अब भीष्म पितामह के मन में ये आया कि कहीं कोई ये ना सोचे कि ये मेरी अपनी मानसिक सोच है कि कृष्ण ही भगवान है, वो कृष्ण जो सारथी बनकर अर्जुन का रथ चलाते हैं, या वो गोपियों के साथ जो इस तरह की लीलाएं कर रहे हैं वो कृष्ण भगवान है, ऐसे सिर्फ मैं ही तो नहीं सोच रहा हूँ। तो अब इस समय की याद कर रहे हैं, जब जिस समय राजसूय यज्ञ सभा में भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई थी। अब वहां पर जब भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई थी, वहां पर सारे ब्राह्मण थे, जिस प्रकार अभी ये जगह जहाँ पर भीष्म पितामह प्रवचन कर रहे हैं, वहां पर भी हमने पढ़ा ना, जितने भी राज ऋषि थे, ब्रह्म ऋषि थे, देव ऋषि थे, सब उपस्थित थे ना। उसी प्रकार उस समय जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, उस समय भी सारे ब्राह्मण राज ऋषि सब भरे हुए थे। इस बात को यहाँ पर बताते हुए भीष्म पितामह श्लोक नंबर 41 में कहते हैं, मुनि गण निपवर्य संकुलिंता सदसी युधिष्ठिर राजसूय एषाम अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृष्टि गोचर एष आविरात्मा। मुनिगण निपवर्य संकुलिंता सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृष्टि गोचर एष आविरात्मा। मुनिगण निपवर्य संकुलिंता सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृष्टि गोचर एष आविरात्मा। मुनिगण निपवर्य संकुलिंता सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृष्टि गोचर एष आविरात्मा। मुनिगण निपवर्य, मुनिगण मतलब परम विद्वान साधुजन, और निपवर्य का मतलब है महान शासक और राजा, यानी जितने बड़े बड़े विद्वान मुनिगण थे, साधुजन थे, और जितने वहां पर बड़े बड़े महान राजा थे, संकुलिता, वो सब समोहित होकर वहां पर आ गए थे, सारे सारे वहां पर एकत्रित हो गए थे। और अंतः सदस्य यानी सभा में, वो वाली जो सभा थी, जब कौन सी वाली,
सदसी, सदसी मतलब उस सभा में, उस समय में युधिष्ठिर राजसूय, जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, एशाम यानी समस्त महापुरुषों का, वो कोई राज्यसभा नहीं थी, वो तो महापुरुषों का सम्मेलन था। सारे महापुरुष, सारे बड़े बड़े महामुनि, सारे साधुजन वहां पर आकर एकत्रित हो गए थे और अर्हणम यानी सादर पूजा उपपद्य प्राप्त किया, ईक्षणीय आकर्षण की वस्तु मामा, मतलब लेकिन फिर भी इतने सारे राजा और महाराजा और ब्राह्मण जितने साधु यहाँ पर जमा थे, लेकिन फिर भी जो वास्तव में पूजन्य है उन्हीं को अर्हणम उपपेद ईक्षणीय, फिर भी वास्तव में सादर पूजा किसने प्राप्त की? भगवान श्री कृष्ण ने। तो यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि वास्तविक यदि कोई पूजा के लायक है, कोई स्मरण के लायक है, कोई वास्तव में यदि शरण ग्रहण करने के योग्य है, तो वो भगवान श्री कृष्ण है। इसी कहते हैं अर्हणम उपपेद ईक्षणीय, कि इसीलिए वो वास्तविक आकर्षण की वस्तु है। वास्तव में भगवान इतने सुंदर थे कि उस समय जब राजसूय यज्ञ में भगवान आए थे तो उस समय सबकी नजर उनके ऊपर थी, चाहे वो कोई मुनिगण थे, कोई राजवंशी थे, कोई जो भी थे, सबकी नजर भगवान के पास थी। और कोई उनको जानते नहीं थे, बहुत सारे न्यू युवक थे, वो जानते नहीं थे कि कृष्ण कौन है, लेकिन सब लोग बात कृष्ण की ओर कर, मतलब इतने ज्यादा भगवान आकर्षित कर रहे थे सबको, इतना ज्यादा आकर्षित कर रहे थे कि वो आपस में पता कानाफूसी कर रहे थे। कोई दूसरे व्यक्ति को कहता कि ब्रह्मा के पास एक सुंदर मनुष्य को बनाने के लिए जितना भी सामान था, जितनी भी बुद्धि थी, जितनी भी कारीगरी थी, लगता है वो सब खर्च कर दिया है इस व्यक्ति को बनाने में, और अब वो ऐसा दूसरा कोई बना नहीं पाएगा। यद्यपि ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं है भगवान, परंतु अब क्योंकि वो लोग को नहीं पता है भगवान के विषय में, तो वो जानते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वो सब ब्रह्मा जी का बना है। तो लोग आपस में से कहते थे कि ब्रह्मा ने अपनी पूरी सारी कुशलता जो है वो कृष्ण को बनाने में खर्च कर दी, जबकि ब्रह्मा के बनाए हुए कृष्ण नहीं है, वो तो स्वयं सिद्ध वस्तु है, आदि पुरुष। ब्रह्मा तो कृष्ण के बेटे है, लेकिन फिर भी वो इतना आकर्षित हो रहे थे कि इतना मोहित हो गए थे, उनको कृष्ण के विषय में कुछ पता नहीं था, लेकिन कृष्ण उनको इतना आकर्षित कर रहे थे कि अर्हणम उपपेद ईक्षणीय, सबका आकर्षण उनकी ओर था और उन्हीं की अग्र पूजा हुई। और आज अपनी कृतार्थता को, मतलब इतना कृतार्थ है अंतिम समय में भगवान उनके सामने है, तो इस कृतार्थता को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं मामा दृषि गोचर एशव आविरात्मा, मामा दृषि गोचर, मैं कितना सौभाग्यवान हूँ, मैं कितना लकी हूँ, ये मेरा कितना सौभाग्य है कि एश आविरात्मा, जो आत्मा है सबकी, भगवान जो सबके हृदय में है, जो वास्तव में अपने धाम में है लेकिन हर एक प्राणी के हृदय में है, वो क्या है आज दृष्टि गोचर, वो मेरे आंखों के सामने खड़े हैं। ये मेरा कितना सौभाग्य है कि आज उन भगवान को मैं अपने नेत्रों के सामने देख रहा हूँ। अनुवाद देखिए, महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा आई हुई थी, और उस सभा में श्री कृष्ण की पूजा सबों ने परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के बाद चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया,
उन दिनों सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से एक घोड़ा छोड़ता था और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या ना माने। जो विरोध करता था उसे सम्राट से युद्ध करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी और उसके स्थान पर दूसरा राजा बनता था। अतएव महाराजा युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही घोड़ा छोड़ा और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के राज्य के सारे शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में करोड़ों रुपए व्यय होते थे, अतएव यह छोटे राजाओं के वश की बात नहीं थी। अब यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी वो राजसूय यज्ञ अश्वमेध जो यज्ञ करते ना, उसमें बताते कि भाई एक घोड़ा होता है, उस पे एक चुनौती लिखी हुई होती है कि या तो तुम इस राजा का नेतृत्व स्वीकार करो या उसके साथ युद्ध करो। तो सारे राजाओं और राजकुमारों को ये मतलब परमिशन होती थी, स्वतंत्रता होती थी कि कोई भी उसका घोड़ा पकड़ सकता है और राजा के साथ युद्ध कर सकता है। राजा जब उसके साथ युद्ध करता था, अगर राजा जीत जाता था तो ठीक है, नहीं तो जो सामने वाला होता था वो हार जाता था या मर जाता था या उसका नेतृत्व स्वीकार करता था। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे किया तो सारे राजाओं ने उन्हें स्वीकार कर दिया, क्योंकि वो एक धर्म के राजा थे, किसी के साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन सब ने उनका नेतृत्व स्वीकार किया और प्लस फिर उन्होंने यज्ञ के राजसूय यज्ञ किया। अब राजसूय यज्ञ करने के टाइम पर सारे जितने भी लोगों ने उनको राजा स्वीकार किया था उनको यहाँ पर सम्मिलित किया था, राजसूय यज्ञ में उनको आमंत्रित किया था। और ये यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई साधारण राजा ऐसा कर भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत बहुत धन की आवश्यकता होती थी। और अर्जुना इसी राजसूय यज्ञ के लिए धन एकत्रित करने के लिए गए थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे राजाओं से धन एकत्रित किया था। मतलब युद्ध करते थे, फिर क्या होता था, राजा लोग उनको स्वीकार कर लेते कि भाई हम आपके साथ युद्ध नहीं करते, और उनकी बदले में उनको बहुत सारा भेंट देते थे। कभी अपनी बेटियों की शादी करके उनको जहेज देते थे। इस तरह से बहुत बहुत धन एकत्रित किया था, इसी अर्जुन को धनंजय भी कहा जाता है। तो कोई साधारण राजा ऐसा कर भी नहीं सकता था। और आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते, ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में संभव नहीं है, ना ही ऐसे पुरोहित हैं जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सके। अब कलयुग में तो यज्ञ इस तरह का संभव ही नहीं, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेध। हाँ, भागवत महापुराण में कहा गया है कि इस कलयुग में तो संकीर्तन यज्ञ ही सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजा तथा बड़े बड़े मुनि महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्रित हुए। सब वहां पर एकत्रित हुए और इस अवसर पर एक विद्वत सभा बुलाई गई, जिसमें बड़े बड़े दार्शनिक, धर्मज्ञ, वैद्य, विज्ञानी तथा सारे मुनि सम्मिलित थे। अब यहाँ पर केवल राजा और राजकुमार भी नहीं थे, विद्वत सभा मतलब ज्ञानी भी बहुत सारे थे। कौन कौन थे वहां पर? बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर थे, बहुत बड़े बड़े धर्मज्ञ यानी जो धर्म के सारे शास्त्रों को जानते थे, वैद्य जो बहुत ना वैद्य कला जिनको पता थी वो, विज्ञानी बहुत एक्सपेरिमेंट जो करते हैं विज्ञानी जो होते हैं वो, और सारे मुनि जो बहुत मनन करते हैं शास्त्रों का अध्ययन करके, सब यानी कि सारे ज्ञानियों को भी यहाँ पर एकत्रित कर। और श्रील प्रभुपाद जी कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं और वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे। समाज के वैश्य तथा शूद्रों का स्थान
निगरणीय था, अतव यहाँ उनका उल्लेख नहीं हुआ है। अब वैश्य और शूद्रों को नहीं, लेकिन जो वास्तव में ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, जो ज्ञानी थे, जो शूरवीर थे, वो सब यहाँ पर आए थे। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते, आधुनिक युग में सामाजिक कार्यों में परिवर्तन होने से वृत्ति परक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई है। अब तो सब लोग शूद्र बच गए, कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय का कुछ पता ही नहीं चलता, सब लोग शूद्र बनकर कार्य कर रहे हैं। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे, इस तरह उस महान सभा में सबकी आंखें कृष्ण पर टिकी हुई थी। कृष्ण इतने सुंदर अर्हणिम उपपेद ईक्षणी हो, हर कोई कृष्ण को ही देख रहा था और कृष्ण की ओर से प्रत्येक व्यक्ति उन्हें देखने और प्रणाम करना चाहता था। कृष्ण की तरफ से उनकी नजर हट रही नहीं थी, कृष्ण इतने सुंदर लग रहे थे। भीष्म देव को यह सब कुछ स्मरण था, अतएव उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य भगवान उनकी आंखों के सामने सदेह उपस्थित थे। आज कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि वही कृष्ण जो सब जिसकी सबकी नजर जिसको देखने के लिए तरसती है, वो मेरे नेत्रों के सामने मम दृष्टि गोचर एष आविरात्मा, वो भगवान जो समस्त जीवों की आत्मा है, सबकी आत्मा को संतुष्ट करने वाले हैं, वो मेरे सामने खड़े हैं। तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य भगवान उनकी आंखों के सामने सदेह यानी साक्षात खड़े थे। अतएव परमेश्वर का ध्यान करना, उनके कार्यकलापों रूप लीलाओं नाम तथा यश का ध्यान करना, यह परमेश्वर के निराकार रूप के विषय में ध्यान करने की उपेक्षा सरल है। अब यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी बता रहे कि जो निराकार की जो भक्ति करते हैं वो किसका ध्यान करें। वो अब देखो, जो भक्त होता है, साकार भक्त होता है, वो भगवान के रूप के विषय में ध्यान कर सकता है कि भगवान के नयन इतने सुंदर हैं, भगवान ऐसे मुस्कुराते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे देखते हैं, भगवान इस तरह से बात करते हैं, उनकी लीलाएं, उनका नाम, उनका यश, ये सब कितना सुंदर है, कितना आकर्षित है। और सबसे बड़ी बात कि उनका ध्यान करना कितना सरल है। और जो निराकार स्वरूप जो है उनका ध्यान करना तो बहुत कठिन है, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसकी कोई लीलाएं नहीं, उसका कोई कार्य नहीं, उसका कोई स्वरूप ही नहीं है, तो उसका कोई कैसे ध्यान करे, वो बहुत कठिन है। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 12 वर्स नंबर 5 में बता रहे हैं कि स्पष्ट कथन है कि भगवान के निराकार स्वरूप का ध्यान करना अत्यंत ही कठिन है। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के विषय में बता रहे, क्योंकि ये जो 12वां अध्याय उसमें श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम परियुपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तम। अर्जुन ने पूछा कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, तो उन दोनों में तेषां के योगवित्तम, उन दोनों में वास्तव में कौन ज्यादा सही है या जो अधिक पूर्ण कौन है, सिद्ध कौन है। तो भगवान ने पहले तो दूसरे श्लोक में ये बता दिया कि ये मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता तेमे युक्त तमामिता। भगवान ने कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, और मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मैं क्या सोचता हूँ कि साकार रूप की जो पूजा करते ना वही परम सिद्ध हैं। लेकिन भगवान ने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो निराकार की पूजा करते हैं वो गलत कर रहे हैं। और भगवान ने कहा कि जो निराकार की पूजा करते हैं ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम परुपासते सर्वत्र गमचिंतम च कूटस्थम अचलम ध्रुव। तो भगवान उनको बता रहे हैं कि लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, जो निराकार की पूजा करते हैं, वो भी बहुत, उनको भी मैं प्राप्त हो जाता हूँ कभी, क्योंकि वो निराकार स्वरूप ही तो मेरा ही है, लेकिन श्लोक नंबर 5 में बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट देते हैं भगवान, कहते हैं क्लेशोधिक अव्यक्ता सत्तचेतसा अव्यक्ता ही कदे दुःखं देहवत् भिरवाप्यते। क्लेशोधिक तरस्तेषां कि ये जो निराकार का पद है उनके लिए तो बहुत कठिनाइयां होती हैं, जिन लोगों के मन में परमेश्वर के अव्यक्त यानी निराकार स्वरूप की प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो भगवान कहते हैं उनके लिए पारमार्थिक उन्नति करना, प्रगति कर पाना अत्यंत ही कठिन है। क्यों? भगवान कहते हैं देहवत भिरवाप्यते, क्योंकि अब हम क्योंकि निराकार नहीं है, हम साकार हैं, तो साकार व्यक्ति जो है वो साकार का उपासना आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि किस तरह से मुझे उसको याद करना है, उसमें ध्यान लगाना है, किस तरह से वो कार्य करता है, उसके नाम गुण लीलाओं में मन लगाना आसान है। लेकिन जो निराकार है, जो मुझसे मैच ही नहीं करता, मैं साकार हूँ वो निराकार है, तो उसका ध्यान करना भगवान कहते हैं कि बहुत कठिन है। अभी किसी निराकार वाली से मैंने पूछा कि जब भगवान ने कहा ये कठिन है तो तुम क्यों करते हो निराकार का ध्यान, भगवान ने भगवद गीता में कहा है ना कि आप ये बहुत कठिन है, आप नहीं करो, इससे बेहतर है। और भगवान ने पहले भी बता दिया जो मेरे अंदर अपना मन लगाते हैं, मेरे साकार रूप का ध्यान करते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है, फिर क्यों आप निराकार की सेवा करते हो, निराकार का ध्यान करते हो? तो मुझे बोला कि भगवान ने ये बोला है ना कि निराकार का ध्यान कठिन है, भगवान ने ये तो नहीं बोला है कि निराकार का ध्यान नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ये तो नहीं बोला है, लेकिन कठिन बोला है, तो फिर हमें भगवान की बात को है ना एक्सेप्ट करके, अभी जैसे हमारी माँ बोले कि ये काम बहुत मुश्किल है, ये काम ऐसे नहीं करो, ऐसे करो तो तुम इजीली कर लोगे, तो फिर है ना हमको ऐसे करना चाहिए ना, नहीं हमें भले मुश्किल है लेकिन फिर भी मैं उसी तरह से करूंगी जिस तरह मेरा, मतलब हम चैलेंज कर रहे हैं ना भगवान को कि हम करके दिखाएंगे, आपको भले लग रहा है कि मुश्किल है लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। तो एक तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने मतलब कलयुग अभी स्टार्ट हुआ था तभी बोला कि ये बहुत मुश्किल है निराकार का ध्यान करना, और आज के मनुष्य की स्थिति 2 मिनट भी मतलब भगवान सामने होते हैं, आज के जीव की कैसी उपस्थिति, भगवान सामने होते हैं विग्रह रूप में, भगवान की लीलाएं भी पता है, भगवान का नाम रूप गुण सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी ना 5 मिनट भी भगवान के अंदर ध्यान नहीं लगता, तो जाहिर सी बात है जो निराकार व्यक्ति हो, जो निराकार स्वरूप है उसके अंदर ध्यान कैसे टिकेगा। लेकिन फिर भी जो कुछ व्यक्ति होते हैं ऐसे जो भगवान की इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, वो सोचते हैं कि बस हमारी मर्जी, हम निराकार का ध्यान करना चाहते हैं तो हम करेंगे। परंतु शास्त्र कहता है महाजनो येन गता सुपन्था, जो महाजन कहते हैं उसी बात को हमें मानना चाहिए, वो अथॉरिटी है और अथॉरिटी की बात हमें समझनी चाहिए। अब यहाँ पर भीष्म पितामह जो 12 महाजनों में से एक है वो हमें बता रहे हैं कि वो श्री कृष्ण जो कि गोपियों के प्राणधन है, जो अर्जुन के सारथी हैं, उन्हीं को अग्र पूजा में यहाँ पर राजसूय यज्ञ में उन्हीं की अग्र पूजा हुई थी, जहाँ पर सारे ब्राह्मण और राज ऋषि थे, और आज भी भीष्म पितामह संपूर्ण राज ऋषियों देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों के सामने यह घोषणा कर रहे हैं कि वही भगवान, वही कृष्ण भगवान है, तो फिर हमें उनकी बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता 15.5 में स्पष्ट कथन है कि भगवान के निराकार स्वरूप का ध्यान करना अत्यंत ही कठिन है, यह कोई ध्यान नहीं है, यह तो समय का उपव्यय है, समय को जाया करना है, क्योंकि इससे शायद ही वांछित फल प्राप्त हो। किंतु भक्तगण भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं के ध्यान करते हैं, अतएव भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ है, इसका उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता 15.9 में भी हुआ है। भगवान अपने दिव्य कार्यकलापों में से अभिन्न है, इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान कृष्ण मानव समाज में के समक्ष वास्तविक स्वरूप में विशेषतया कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित हुए थे, तो उस समय वे महानतम पुरुष माने गए, भले ही तब उन्हें भगवान न माना गया यह प्रचार कि कोई महापुरुष मृत्यु के बाद ईश्वर की भांति पूजा जाता है भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई भी मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता, ना ही भगवान सभी ना ही भगवान कभी मनुष्य बन सकते, भले ही वे साक्षात विद्यमान क्यों ना हो। ये दोनों ही विचार भ्रांत मूलक हैं। मानववाद का विचार भगवान कृष्ण पर लागू नहीं होता। अभी श्रील प्रभुपाद जी 12.9 के विषय में बताते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। उसमें भगवान कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोपि मयि स्थिरम, अगर तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते हो तो डरो नहीं। आप क्या करो, अभ्यास योगेन ततो, आप योग भक्ति योग का अभ्यास करो और विधि विधानों का पालन करो और इस तरह से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन, भले मन आपका एकाग्र नहीं हो रहा है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि कृष्ण की विग्रह सामने होती है लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो भगवान कहते हैं यदि मन आपका स्थिर नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, आप भक्ति योग के रूल्स को फॉलो करो, भगवान के पवित्र नाम का जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान की कथाओं का श्रवण करो, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाओ, भगवान के आशा विग्रह की सेवा करो, आरती करो, भगवान को सुंदर सुंदर श्रृंगार करो। तो ये इससे क्या होगा कि हृदय इतना पवित्र हो जाएगा, धीरे 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 मन लगना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने इतना कहने के बाद बताया कि उस समय भले ही लोग भगवान को भगवान नहीं मान रहे थे, लेकिन इसका मतलब सब लोग आकर्षित हो रहे थे भगवान की ओर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान नहीं है। अगर नहीं मानता कोई है, अगर भगवान को कोई सूर्य नहीं मानता है, कुछ और मानता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कोई बोले कि भाई नहीं, वो एक बहुत बड़ा बल्ब है जो चमक रहा है, ये आकर्षित कर रहा है, लेकिन वो सूर्य नहीं है, ये तो बल्ब है, तो कोई मान ही नहीं रहा है, तो इसमें सूर्य को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, और सूर्य को फर्क भी नहीं पड़ता लेकिन सूर्य बदलेगा थोड़ी, सूर्य तो सूर्य ही रहेगा ना। कोई बोले ये सूर्य नहीं है तो सूर्य नहीं होगा क्या? तो इस बात को श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान श्री कृष्ण मानव समाज में के समक्ष वास्तविक रूप में विशेषतया कुरुक्षेत्र के युद्ध में उपस्थित हुए थे, उस समय के महानतम पुरुष माने गए थे, महानतम माने गए थे, भले ही तब उन्हें भगवान नहीं माना गया, यानी कि लेकिन उसे भगवान नहीं मानते थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि जब भगवान चले गए उसके बाद वो भगवान हुए, वो जब थे तो भी वो भगवान थे, ऐसा थोड़े कि भाई जब तक वो थे मनुष्य संसार, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बताते 9.11 में, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावं अजानन्तो मम भूत महेश्वर। जब मैं भौतिक संसार में मनुष्य तन धारण करके आता हूँ तो जो बेवकूफ है वो समझते नहीं है, वो समझते हैं कि ये कृष्ण तो भगवान है असल में, लेकिन ये जो सामने खड़ा है वो भगवान नहीं, क्योंकि ये तो शरीर धारण किया हुआ मनुष्य है, तो वो उसको कृष्ण नहीं मानते। और फिर जब वो जब अपनी लीला करके समेट के ऊपर वापस चले जाते हैं अपने धाम में, तो बोलते हैं हाँ कृष्ण है, लेकिन ऐसा थोड़े, भले कृष्ण अपने धाम में रहे, भले कृष्ण इस भौतिक जगत में कोई लीला करते हैं, भले अर्जुन के सारथी बनते हैं, भले गोपियों के प्राण धन बनते हैं, भले ही कोई भी कार्य करते हैं, तो कृष्ण कृष्ण ही है, वो साकार भी है, भगवान का वास्तविक स्वरूप है, भगवान की वास्तविक लीला है, भगवान का प्रेम का आदान प्रदान है अपने भक्तों के साथ, भगवान का नाम है, भगवान साक्षात है, भगवान परम पुरुष है। और भगवान तो भगवद गीता में यहाँ तक कह दिया चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 24 में, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ति माम बुद्धया परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तमम् अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम, अव्यक्त यानी जो दिखता नहीं है, व्यक्ति यानी स्वरूप को आपन्नम यानी प्राप्त हुआ। वो कहते हैं जो बुद्ध मन्यन्ते माम बुद्धया, जो अबुद्धया मतलब जो बिल्कुल बुद्धिहीन होते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, बुद्धिहीन मनुष्य वो भगवान को ठीक से जानते नहीं है। और वो क्या सोचते हैं कि भगवान पहले निराकार थे और अब ये साकार स्वरूप धारण किया, वो भगवान नहीं है असल में, लेकिन वास्तव में वो निराकार जो है वो भगवान है। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम, जो वास्तव में निराकार है वो भगवान है, भले उसने जब ये साकार रूप धारण कर लिया तब वो भगवान है। तो भगवान कहते हैं परम भावम अजानंतो, बेवकूफ है मेरे परम, अपने अल्प ज्ञान के कारण वो मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को जान ही नहीं पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, चाहे मैं कहीं पर भी रहूं, इस भौतिक जगत में रहूं या फिर अपने आध्यात्मिक लोक में, मैं वही हूं, आध्यात्म में समस्त जीवों की आत्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सर्व कारण कारणी हूं और मैं ही वास्तविक गति हूं। तो यहाँ पर भीष्म पितामह हमें इसी बात को याद कराते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं।